हरे कृष्णा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा। लीला पुरुषोत्तम का पंचम अध्याय नंद तथा वसुदेव की भेंट। यद्यपि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्मपिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह के साथ कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। दूसरे दिन ही ये घोषणा कर दी की गई कि यशोदा के पुत्र उत्पन्न हुआ है। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों तथा ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। शिशु के जन्मोपरांत ज्योतिषी जन्म लग्नों की गणना करते हैं और शिशु के भावी जीवन की जन्म पत्री तैयार करते हैं। शिशु जन्म के बाद एक अन्य उत्सव भी किया जाता है। उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं और आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से अपने आप को सजाते हैं और तब वे सब शिशु तथा ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। ये प्रथा आज भी चल रहा है। तो ये हमारा जो संस्कृति हम देखते हैं, भारतीय संस्कृति कितनी पुरानी है। वैसे पश्चिम जगत में वो लोग सोचते हैं कि सभ्यता का प्रकाश हुआ था करीब 3-4 हजार साल पहले। हाँ, वहां पर सभ्यता नहीं था। वहां सब जंगल में रहता था, मांस खाता था, रहने के लिए घर नहीं रहता था। वो जगह पश्चिम के जगत ऐसा था, बल्कि भारत ऐसा नहीं था। भारत का जो संस्कृति 5000 साल भी पहले हम देख रहे हैं, 5000 साल का भी संस्कृति जो है वो आज ही का जैसा है। परंतु आज क्या हो रहा है, वो जो संस्कृति था उसको हम खो रहे हैं। जो इतने बढ़िया संस्कृति जो था उसको हम खो रहे हैं। और हम खोकर क्या करते हैं, पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं। और वहां का सभ्यता का प्रकाश कब हुआ था, वहां का पहले कैसा था कि हम लोग सोचते हैं पश्चिम की जगत बहुत सभ्य है, बल्कि असल में ये सही सभ्यता भारत का ही था। भारत में जब इतनी सुंदर सभ्यता का प्रकाश हुआ तब वो लोग वहां जंगल में रहता था, कपड़ा नहीं पहनते थे। क्या पहनता था, जानवर का जो छाल होता है उसको पहनता था। ठंडा काफी था वहां, तो इसलिए उससे कवर करता था शरीर को। मांस खाता था, रहने का कोई जगह नहीं था, मकान नहीं था, उन लोगों का गुफा में रहता था। बल्कि आज हम सोचते हैं कि वही है असल सभ्यता। और भारतीय का जो सभ्यता है वो कहानियां हैं, ये कहानियां हैं। 5000 साल की कहानियां भी अगर है तो ये कहानियां तो 5000 साल की पुरानी कहानियां है। तो अगर कहानियां भी इतना उन्नत होता है हुआ है तो वहां का स्थिति तब कितना कैसा था, ये हम विचार कर सकते। बल्कि असल बात ये है कि सभ्यता जो है, ये सभ्यता ऐसा नहीं कि पहले मनुष्य ने जंगल में रहता था वो धीरे धीरे सभ्य बना, जैसे वो लोग सोचते हैं। डार्विन है एक व्यक्ति, डार्विन ने एक मतवाद तैयार किया जिसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहा जाता है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब ये है कि पहले जीवन का सृष्टि हुआ है, अचानक कोई केमिकल का कॉम्बिनेशन हो गया है किसी कंडीशन में, कोई टेम्परेचर और प्रेशर में, वो केमिकल का कॉम्बिनेशन के कारण जीवन का उद्भव हुआ है। पहला जो जीवन था वो एकदम यूनिसेलुलर जीवन था। यूनिसेलुलर जीवन कैसा है? एमीबा प्रोटोजुआ का जो जीवन, वो एक कोशी प्राणी, एक कोश, एक कोश ही उसका जीवन है। तो उससे धीरे धीरे वो एक से बहुकोशी हुआ, बहुकोशी प्राणी से कीड़े वगैरह बना, और धीरे धीरे उससे चिड़िया जानवर ये वगैरह बना। तो बनते बनते जानवर से बंदर बना, और बंदर से मनुष्य बना। तो ये है उसका विचार, बल्कि ये विचार क्या सही है या गलत है? आजकल का विचार, ये जो आजकल का जो विचार है इस जगत में, वो सोचते हैं कि वही सही विचार है। गलत नहीं, वही सही विचार है। ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ है। बल्कि हम अगर अपना साधारण बुद्धि के द्वारा अगर विचार करते हैं तो एक विचार आता है, तो चीटे भी है, कीड़े भी है, यूनिसेलुलर जैसे अमीबा प्रोटोजोआ भी है, और मनुष्य भी है। तो अगर ऐसा उसका उद्भव होता था तो अमीबा प्रोटोजोआ डेवलप्ड होते 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 सब मनुष्य बन जाता था। अमीबा नहीं रहता, प्रोटोजोआ नहीं रहता, जानवर नहीं रहता, सब मनुष्य बन जाता। बल्कि हम देखते हैं कि मनुष्य आज भी है, बंदर भी आज भी है, जानवर आज भी है। और बड़ी बात यह है कि अब तक हम कोई किसी ने कभी एक बंदर को मनुष्य बनने को नहीं देखा। एक बंदर का गर्भ में मनुष्य का जन्म होने को कोई देखा है? प्रभुपाद ने एक बार मजाक करते हुए कहा कि मनुष्य बंदर से मनुष्य नहीं बन रहा है, बल्कि मनुष्य से बंदर बन रहा है। सो ये जब हम सही रूप से जब विचार करते हैं, सही ढंग से जब विचार करते हैं, तब एकदम साफ साफ हमारे मालूम पड़ जाता है कि सही बात क्या है। सही बात ये है, ये जो श्रीमद् भागवतम, ये तो कोई 200-300 साल की पुरानी ग्रंथ नहीं है। वो भी आजकल वो बंदर के संग में सब भारतीय पंडित भी सब बंदर का ऐसा विचार ही करना शुरू किया। वो बोल रहा है भागवतम का रचना कब हुआ है? भागवतम का रचना हुआ करीब एक डेढ़ हजार साल पहले। वो बोलते भारत भर भागवत का रचना हुआ है 5000 साल पहले, एक डेढ़ हजार साल पहले। बल्कि जब हम विचार करते हैं, एक करीब लगभग 1000 साल पहले मुसलमानों ने भारत में प्रवेश किया। तो यहां के जो भारत के जो राजाओं थे, वो क्या सभ्य थे या असभ्य थे? उनको तब ये भारतीय शास्त्र था वहां क्या नहीं था? और वो लोग ये इसका चर्चा कब से कर रहे हैं? भारतीय पंडितों ने बहुत से पुराने जमाने से ये कर रहे हैं। ये विचार उन लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है। उन लोगों का अपना जो मालिक, जो अंग्रेजों ने उनको जो सिखाया वो सब सीख गए। भारतीय शिक्षा आज क्या है? भारतीय शिक्षा नहीं रहा। भारतीय शिक्षा अंग्रेजों के दिया हुआ जो शिक्षा था, वो शिक्षा आज भारत का शिक्षा है। अंग्रेजों में चले गए, बल्कि अंग्रेजों ने भारतवासियों को जो सिखाया, वो भारतवासियों ने उसको ही प्रणाम करके ग्रहण कर रहा है। भारतीय जो संस्कृति है उसको ग्रहण नहीं कर रहे। हमारा संस्कृति है ये श्रीमद् भागवत, भगवद गीता। बल्कि उसका पढ़ाई कहीं हो रहा है? ना तो स्कूल में हो रहा है, ना तो कॉलेज में हो रहा है, ना तो घर में भी हो रहा है। भारतवासी आज सब क्या बनना चाह रहा है? अंग्रेज बनना चाह रहा है। ये बदनसीब है कि मेरा भारत में जन्म हुआ। अच्छा होता था कि अगर मेरा जन्म यूरोप या अमेरिका में होता। आदमी लोग आजकल ऐसा ही सोच रहा है। इस सिलसिले में एक कहानी का याद आता है, आप सुने हैं कि एक कौवा मोर बनने को चाह, ये आपको मालूम है? ये पंचतंत्र का कहानी है और ईशप्स फेबल का भी कहानी है। एक कौवा ने मोर का जो पंख है उसको लेकर अपने को वो पंख लगाकर वो सोचने लगा कि मैं मयूर बन गया हूं। तो कौवा ने जब आया तो बोला, नहीं मैं कौवा नहीं हूं, मैं मोर हूं। और जब वो मोर के पास जब गया तो मोर ने देखा ये तो कौवा है, तो उसको सब वैसे डांटते हुए ठकरते हुए उसको वहां से भगा दिया। अच्छा, कौवा अगर मोर बनना चाहता है ये तो हो सकता है, कौवा अगर मोर बनना चाहता है इसमें कोई गलत नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। बल्कि अगर मोर कौवा बनना चाहता है तो ये बहुत ही दुख की बात है। तो हमारा हाल हुआ है, हम थे मोर और अब हम कौवा बनने का कोशिश कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं 5000 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म लीला हुआ, जन्म नहीं जन्म लीला हुआ। तब कृष्ण का जन्म का उत्सव महोत्सव कैसे बनाया गया हम देखते हैं। ये नंदोत्सव हो रहा है। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज विद्वान ज्योतिषियों के द्वारा पुत्र का जो जन्म लग्न की गणना करने करवाया कि ये लड़का का भविष्य कैसा होगा। तो उस समय क्या करते हैं, सारे घर वाले और पड़ोसन इकट्ठा होते हैं, बहुत आग्रह से उन्होंने सुनते हैं ज्योतिष क्या कहते हैं। हाँ, ज्योतिष कह रहा है ये होगा, ये बच्चा ऐसा होगा बड़ा होकर। तो ये प्रथा आज भी हो रहा है, बल्कि आजकल हम क्या कर रहे हैं उसको हम त्याग रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये ज्योतिष वगैरह ये सारे कुछ काम के कुछ नहीं है, हम ये नहीं मानते हैं। और हम सोचते हैं जब हम बोलते हैं ज्योतिष वगैरह और हमारे सांस्कृतिक जो अनुष्ठान है ये हम नहीं मानते, इसका मतलब है मैं बहुत सभ्य बन गया, मैं एक अंग्रेज बन गया, कौवा बन गया और कितना कौवा का आजकल कितना घमंड है, देखो मैं कौवा जैसा खाना खाता हूं, मैं कौवा जैसा कपड़ा पहनता हूं, मैं कौवा जैसा शराब पीता हूं, मैं कौवा जैसा अपना बीवी को लेकर डांस करता हूं। ये है आजकल का सभ्यता। तो क्या करना चाहिए, वो सभ्यता को ग्रहण करना चाहिए या सही सभ्यता को वापस लाना चाहिए, ये काम हर भारतवासी को ग्रहण करना चाहिए। सारा दुनिया भर ये जो वैदिक संस्कृति है इस संस्कृति को प्रचार करना चाहिए। देखिए कितना सुंदर ये है। शिशु जन्म के बाद एक अन्न उत्सव भी किया जाता है, उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं और आभूषणों तथा सुंदर वस्त्र से अपने आप को सजाते हैं और तब वे सब शिशु तथा ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। ऐसा होना अच्छा है ना, कि ऐसे होने से जब ऐसा होता तो हमारे बीच में जो संपर्क ये बहुत ही गहरा बनता है। ऐसी आदान प्रदान के द्वारा हमारा संपर्क बनता है, बल्कि आजकल संपर्क है। भाई का लड़का हुआ है, भाई देखने को नहीं जाता, वो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फोन उठाकर बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस। देखने को भी नहीं जाता है, तो उसका भविष्य सुनना या क्या गणना करना है कि क्या बात है। इस अवसर पर संवेद सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चारण किया और ज्योतिषियों ने जन्मोत्सव संपन्न कराया। इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितरों को भी पूजा की जाती है। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 200,000 अलंकृत गाय दान में दी। 200,000 गाय दान किया, और ऐसे गाय भी नहीं, ऐसे केवल दूध वाली गाय नहीं, बछड़ा समेत स्वर्ण आभूषणों से द्वारा विभूषित गाय को दिए थे, और एक दो गाय नहीं, 200,000 गाय। नंद महाराज का कितने गाय था? 9,00,000, उनमें 200,000 दे दिया। आभूषणों से सुशोभित अन्न के ढेर भी दान किए। इस संसार में धन धान्य की प्रति धन धान्य की प्राप्ति कोई प्रकार से होती है, किंतु कभी कभी ये प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र साधन से नहीं होती, क्योंकि संपत्ति संचय की यही प्रकृति है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस तरह अर्जित संपत्ति की शुद्धि ब्राह्मणों को गौवों तथा सोने का दान देकर की जाती है। जब संपदा को संचय होता है, संग्रह होता है, तो उसमें कुछ पाप रह जाता है, तो उस पाप को संशोधन किससे किया जा सकता है? ब्राह्मण को दान करने से। और क्या दान है? गौवा और सोने। हमें सदैव समझना चाहिए कि इस संसार में हम सदैव कलमुष युक्त अवस्था में रह रहे हैं, अतः हमें अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा स्वयं के शुद्धि करना होगा। जीवन की शुद्धि नित्य स्नान एवं शरीर को भीतर तथा बाहर से सफाई द्वारा और को स्वीकार करके की जाती है। तप, भगवत पूजा तथा दान द्वारा हम संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के लिए वेद अध्ययन द्वारा आत्मशुद्धि की जा सकती है। अतः वेदों में कहा गया है कि जन्मना प्रत्येक व्यक्ति शुद्र होता है और शुद्धि संस्कार द्वारा वो दीज बनता है। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है, जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है। जब मनुष्य परम सत्यों को पूर्ण रूपे न समझ लेता है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। जब ब्राह्मण और अधिक पूर्णता को प्राप्त होकर लेता है तो वो वैष्णव या भक्त बन जाता है। जन्म के अनुसार सब शूद्र है, ब्राह्मण का लड़का भी शूद्र। जन्मना जायते शूद्र, केवल शूद्र का ही संतान शूद्र नहीं है, जन्म के अनुसार शूद्र सब शूद्र होता है। अर्थात शूद्र का मतलब क्या? शूद्र का मतलब है अज्ञान। जन्म के अनुसार सभी अज्ञान होता है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान उसमें नहीं रहता है। जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात भवति द्विज। ये जो दीक्षा विधि है, दीक्षा संस्कार है उसके द्वारा वो ब्राह्मण बनता है। अर्थात द्विज, द्विज का मतलब दूसरा जन्म मिलता है। वेदपाठात भवेद विप्र, वेद पाठ करने से वो विप्र बनता है। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और जब उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो जाता है तब वो ब्राह्मण बनता है। और ब्रह्म के वो ब्रह्म से भी आगे बढ़कर क्या है, हाँ, ब्रह्म से भी आगे बढ़कर परमात्मा, परमात्मा से भी आगे बढ़कर भगवान। तो जब वो भगवान को साथ संपर्क जोड़ लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे भागवत या वैष्णव कहा जाता है। तो जीवन, हर व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य वैष्णव बनना चाहिए, भगवान का भक्त बनना चाहिए। हम सब देखते हैं जो जीवन का अंतिम उद्देश्य का वर्णन कैसे हो रहा है, भगवत भक्ति से होता है। जैसे महाभारत में हम देख रहे हैं कौरव और पांडव दो पक्ष हैं, एक पक्ष भगवान को नहीं मान रहा है और दूसरा पक्ष, पांडव पक्ष, भगवान को मान लिया। तो इनमें से आदर्श कौन से पक्ष है? महाभारत पढ़कर कोई सोचता है कि मैं दुर्योधन बनूंगा? महाभारत पढ़ के सब सोचते हैं, जैसे हम बचपन में जब पढ़ते थे हमारा हीरो कौन था, अर्जुन, भीम। अर्जुन कौन है? अर्जुन भगवान का भक्त है। हम कर्ण नहीं बनना चाहते, हम सब अर्जुन बनने चाहते। भीम का आदर्श हमको, हमने ग्रहण किया। जैसे हम देखते हैं नामकरण होता है, नामकरण जब होता है क्या, कैसा नाम है, भगवान के जैसे नाम विचार के, भगवान के भक्त का नाम होता है। जैसे अर्जुन नाम बहुत सारे लड़का को होता है, दिया जाता है, बल्कि कभी किसी ने दुर्योधन नाम दिया अपने बच्चा को? ना कोई अपने बच्चे को कंस नाम रख।
नास्तिक है ना,
नास्तिक भी नहीं रखता, नास्तिक भी नहीं रखता है, बल्कि आजकल रख रहा है। हम सुना है कोई बच्चा का नाम करण रखा है, कर्ण, ठीक है चलो कर्ण तो चलेगा, बल्कि आजकल कोई टीवी सीरियल में सुना था बन रहा है जहां दुर्योधन हीरो है, रावण, रावण हीरो है। तो चलो देख रहे, देखिए क्या हाल हो रहा है देश। कभी कभी ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर हमको हमको विचार होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो है, ये देखकर, ऐसे टीवी देखकर क्या शिक्षा प्राप्त होना चाहिए, रावण बनना चाहिए ना, क्या रावण नहीं बनना चाहिए, ये शिक्षा होना चाहिए। रामायण में भी रावण का वर्णन है, बल्कि रावण हीरो नहीं है। ऐसे लगता है रावण वैसे बहुत शक्तिशाली है, बहुत वैभवशाली है, बहुत काम के काम करने वाला आदमी है, बहुत क्षमतावान आदमी है। उसका कहानी बताया गया, बल्कि कोई भी उसको, उसके, उसको आदर्श बनाकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहता है। उस उत्सव में एकत्रित सारे ब्राह्मणों ने शिशु को सौभाग्य के लिए विविध वैदिक मंत्रों का स्तवन किया। विविध मंत्रोच्चार सूत, मागध, बंदी तथा बिरुदावली कहलाते हैं। इन मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त भेरी और दुंदुभिया भी घर के बाहर जब बज रही थी। इस अवसर पर सभी घरों में तथा गोचरों में, गोचर तक में विविध हर्ष ध्वनियां सुनाई पड़ती थी। घरों के भीतर तथा बाहर पीसे चावल से बना पीसे चावल से नाना प्रकार का कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे और सड़कों तथा गलियों भर में सुगंधित जल छिकड़ा गया था। छातों तथा छज्जों को विविध प्रकार की झंडियां तथा बंधन बारों से सजाया गया था। सारे द्वार हरी पत्तियों तथा फूलों से बनाए गए थे। सारी गौओं बछड़ों तथा सांडों को तेल तथा हल्दी का लेप लगाया गया था। गेरू आदि रंगीन खनिजों से उन्हें विचित्र किया गया था। उन्हें मोर पंखा के हार पहनाए गए थे और वे रंगीन वस्त्र तथा सुनहरे हारों से सुसज्जित थे। ये भी एक सभ्यता का दृष्टांत है। उन लोगों ने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए थे, उन्होंने उनका आभूषणों से सजाया गया, विशेषतया स्त्रीगण और घर सजाया गया था, जो आजकल भी होता है गांव में हम देखते हैं। यहां करते हैं क्या, बंगाल में होता है जिसे आल्पना कहा जाता है, यहां पर क्या बोलते हैं रंगोली। यहां रंग से होता है, वहां चावल के कूड़ा चावल पीस कर उससे बनाया जाता है, बहुत सुंदर डिजाइन बनता है। और तो कृष्ण का जन्म क्षण में, जन्म के समय ऐसे सारे आयोजन किया गया। इसका मतलब है हर व्यक्ति के हृदय में बहुत हर्ष हो रहा था और उसका प्रभाव चारों ओर दिखाई दे रही थी। जब समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा के पुत्र को जन्म दिया है तो वे आनंद से विभोर हो उठी और उन्होंने भी विविध प्रकार के अमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत किया और अपने शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाए। जिस प्रकार पराग की धूलि से कमल पुष्प की शोभा दिखने लगती है, उसी प्रकार समस्त गोपियों ने अपने कमल के समान मुखमंडलों पर कुमकुम रज का लेप किया। फिर से सुंदर गोपियां अपनी अपनी भेंटों लेकर नंद महाराज के घर पहुंची। अपने भारी नितंबों तथा उन्नतों उरोजों से बोझिल ये गोपियां नंद के घर की ओर तेजी से नहीं चल पा रही थी, किंतु कृष्ण के आह्लादकारी प्रेम से वे जल्दी जल्दी चलने लगी। उनके कानों में मोती की बालियां थी, गले में रत्नजटित हार थे और उनके होठ तथा नेत्र विभिन्न प्रकार के रंजकों तथा काजल से अलंकृत थे। उनके हाथों में स्वर्णिम चूड़ियां थी। चूंकि वे तेजी से पक्की सड़क पार कर रही थी, उनके शरीर के अलंकृत करने वाली पुष्प मालावे टूट टूट कर गिर रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आकाश से पुष्प वर्षा हो रही हो। शरीर के विविध आभूषणों से गति से वे भी सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वे गोपिकाएं नंद यशोदा के घर पहुंची और बालक को इस प्रकार आशीष देने लगे, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। जब वे इस प्रकार बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी तो उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप दधि दूध तथा जल का मिश्रण का मिश्रण न केवल बालक पर अर्पित वहां पर उपस्थित अन्य सभी लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर पोटू संगीतकारों द्वारा विविध प्रकार के बजे भी बजाए जा रहे थे। तो ऐसे उन्होंने आनंदोत्सव या नंदोत्सव मना रहे थे। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी तो वे अत्यंत प्रमोदित हुए और वे भी उन पर दधि दूध मक्खन तथा जल छिकरने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोपियों की ये लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने एकत्रित चारणों को अत्यंत उदारतापूर्वक दान दिया। इनमें से कुछ चारण उपनिषदों तथा पुराणों से आख्यान गा रहे थे, कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे और कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहां पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सबों के वस्त्र तथा आभूषण तथा गांव को दान दे रहे थे। जब आनंद होता है तो क्या करते हैं लोग? जब आनंद होता है तो दान देते हैं, है ना? जब हर्षित होता है, आनंद होता है, तो दिल बड़ा बन जाता है और निरानंद के कारण दिल संकुचित हो जाता है। तो दिल जब उदार रहता है तब दान करने का, दूसरे को भला करने का, दूसरे को कुछ देने का इच्छा होता है। और दिल जब संकुचित हो जाता है तो क्या होता है? सब अपने लिए रख लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने लिए रखना चाहिए सब कुछ या बांटना चाहिए, दान देना चाहिए? जो उदार है वो दान देंगे, और जितना दान देंगे, दिल जितना उदार होगा उतना ही उस दिल में आनंद आएगा। वैसे हम देख रहे हैं ब्रजवासियों का हाल क्या हुआ, कैसा हुआ। कृष्ण का जन्म हुआ होते ही उन सबको कितना आनंद हो रहा है और इस आनंद का प्रकाश इस तरह हो रहा है, गाने लगे, नचने लगे, अपने आप को बहुत सुंदर रूप से सजाकर कृष्ण को दर्शन करने के लिए आए। कैसे आए सब वो लोग? नाचते हुए आए उन्होंने आनंद के कारण। जब आया इतना आनंद हुआ, वो सब सबको दान देने लगा, चलो ये ले लो तुम, और वो भी लेकर जो लिया ब्राह्मण वो सोचा ठीक है मैं तो लिया है बल्कि इसका तो मेरा जरूरत नहीं है, तो वो भी और किसी को दान दे दिया। तो ऐसे जब एक दूसरे के साथ ऐसे दान और ग्रहण का विनिमय होता है तब वहां का वातावरण कैसा बनता है। इसलिए वैष्णव समाज में, भक्तों का समाज में ऐसे दान और प्रतिग्रह, ब्राह्मण समाज में दान और प्रतिग्रह होना चाहिए। ब्राह्मण का गुण क्या है? ब्राह्मण का छह प्रकार का कार्य कर्म का, कर्मों में ब्राह्मण बहुत निपुण होते हैं, बहुत दक्ष होते हैं। वो है पठन पाठन, खुद पाठ करना और दूसरे को पढ़ाना सिखाना, जजन जाजन, जजन करना, यज्ञ संपादन करना दूसरे के लिए और यज्ञों में सहयोग देना, और दान और प्रतिग्रह, दान करना और ग्रहण करना। ब्राह्मण दूसरे को दान देते हैं, ग्रहण भी करते हैं। तो ऐसे जब समाज में जब ऐसे प्रीतिपूर्वक आचरण होता है तो वो समाज आनंद से भर जाता है। इस प्रकार कृष्ण के धर्मपिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाएं को पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर एक का सादर स्वागत किया और जिसने जो चाहा उसे दान में दिया। विद्वान ब्राह्मणों के पास आए न अन्य साधन का न था विद्वान ब्राह्मणों के पास आय का अन्य साधन न था, अतः वे अपने भरण के लिए वैश्य तथा क्षत्रिय जातियों पर पूर्णतः आश्रित रहते थे। उन्हें जन्मोत्सव, ब्याह आदि शुभ अवसर पर उपहार प्राप्त होते रहते हैं। इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और लोगों की इच्छाएं पूरी करने का प्रयास में लगे थे, तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु कृष्ण प्रसन्न रहे। नंद महाराज को इसका तनिक भी ज्ञान न था कि ये बालक विष्णु का मूल है। वे उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव की अत्यंत भाग्यशालिनी पत्नी थी। यद्यपि वे अपने पति से दूर थी, किंतु महाराज नंद के पुत्र कृष्ण को जन्मोत्सव पर उन्हें बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। वे माला, कंठहार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान में गई और इधर उधर ठहलने लगे। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता वो श्रृंगार नहीं करती, किंतु रहिणी ने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से ये सुस्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था। चूंकि भगवान कृष्ण ने राजा नंद तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया, अतएव लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन पहले से लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा स्थली बन चुका है। ये इसका वर्णन गोपी गीता का पहला श्लोक में बहुत सुंदर रूप से हुआ है। जायति तेधिकं जन्मना व्रज शायत इंदिरा शाश्वदत्र ही। इंदिरा शाश्वदत्र ही, शाश्वत मतलब निरंतर हर समय के लिए, अत्र ही यहां पर विराज कर रही है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने वृंदावन में जन्म लिया। जब से कृष्ण वृंदावन में जन्म लिया तब से लक्ष्मी देवी वृंदावन में विराज कर रही है। और जब लक्ष्मी देवी रहती है तो क्या होता है? ऐश्वर्य और वैभव, श्री और संपदा से भर जाता है। मुझे जन्मोत्सव के बाद महाराज नंद ने कंस सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के सक्षम ग्वालों के बुलाया और अपने अनुपस्थिति में वृंदावन की देख रेख करने का आदेश दिया। तो ऐसे जो जो गृहस्वामी होता है, घर के स्वामी होता है, जब कभी बाहर जाते हैं तो उसका घर का संभालने का जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर देकर जाते हैं, विशेष रूप से बाहर का जो काम है। तो नंद महाराज को जाना पड़ा बस कंस को टैक्स देने के लिए। तो नंद महाराज वहां गए और तो हम थोड़ा आगे चला जाते हैं। हम वासुदेव के ऐसा कहने का अच्छा वासुदेव के साथ नंद महाराज का साक्षात्कार हुआ है यहाँ। हर एक को अपने सकाम कर्म के अनुसार पृथक पृथक ढंग से कार्य करना होता है और इस प्रकार विलग हो जाना पड़ता है। उदाहरणार्थ सागर को लहरों पर अनेक पौधे तथा लताएं तैरती रहती हैं। कभी वे पास पास रहते हैं तो कभी सदा के लिए बिछुड़ जाते हैं। एक पौधा इधर जाता है तो दूसरा उधर। इसी प्रकार जब हम साथ साथ रहते हैं तो हमारे पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती है, किंतु काल की इस तरंगों के फल स्वरूप कुछ समय बाद हम विलग हो जाते हैं। ये दृष्टांत जो उन्होंने दिए हैं बहुत सुंदर है कि जैसे हम सागर के लहर पर अनेक पौधे तथा लताएं तैरती रहती है, कुछ समय के लिए वो साथ आता है बस अलग हो जाता है। तो ऐसा ही हमारा जीवन भी इस भौतिक जगत में कुछ समय में हम कम समय के लिए हम एक साथ होते हैं और बाद अलग हो जाते हैं और कभी नहीं मिलते। एक जन्म में हम एक दूसरे के साथ आते हैं, कुछ समय के लिए साथ रहते हैं और बाद में अलग हो जाते हैं। वसुदेव के ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि यद्यपि देवकी के गर्भ से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए थे किंतु दुर्भाग्यवश वे सभी जाते रहे। वसुदेव का मन में कितना कष्ट हो रहा था, यद्यपि उसका 8 पुत्र हुआ था बल्कि एक भी उसके पास नहीं रहा। कुछ समय के लिए आया और अलग हो गया। जब आता है तो क्या कितना प्यारा संपर्क बनता है माता पिता के साथ पुत्र का और अलग हो जाते हैं। वसुदेव नंद महाराज को बताना नहीं सका कि ये असल में ये मेरा लड़का है, आप इतना महोत्सव मना रहे हैं आपका पुत्र हुआ है, बल्कि ये पुत्र मेरा पुत्र है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कुछ किया तो कंस का पता लग जाएगा कि ये मेरा पुत्र है तो आकर उसको मारने का कोशिश करेगा। तो इसलिए अपना कष्ट जो है वो अपना हृदय में ही रख दिया था। यहां तक कि वे अपने एक पुत्र कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। वसुदेव को उसकी जुदाई अनुभव हो रही थी किंतु वे असली बात अभिव्यक्त कर न सके। उन्होंने कहा, कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताएं, आपके पास इतने सारे पशु हैं, वे सभी प्रसन्न तो हैं, उन्हें पर्याप्त घास तथा पानी मिल तो रहा है, मुझे ये भी बताए कि हम एक ये भी बताए कि इस समय आप जहां रह रहे हैं वहां वो स्थान उपद्रव से मुक्त तथा शांत तो है। वसुदेव ने कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से ही इतने सारे प्रश्न किए थे। उन्हें ज्ञान था कि कंस तथा उसके अनुजाई नाना प्रकार के असुरों को भेजकर कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे सब पहले ही ये निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण जन्म के बाद 10 दिनों के भीतर उत्पन्न सारे बालकों का वध कर दिया जाए। क्योंकि वसुदेव कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में पूछा। उन्होंने बलराम तथा उसकी माता रोहिणी का भी समाचार पूछा। फिर समाचार पूछा जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया था। वसुदेव ने नंद महाराज को ये भी स्मरण दिलाया कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता, वो आपको ही अपना पिता जानता है, और अब आपके पास दूसरा पुत्र कृष्ण भी हो गया। मेरे विचार से आप इन दोनों को ठीक से देखभाल कर रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव ने नंद महाराज के गोधन की कुशल क्षेम पूछी। पशुओं की और विशेष रूप से गायों की रक्षा अपने संतान की ही भांति की जाती है। वसुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रिय का धर्म है कि वो प्रजा की रक्षा करे, और वैश्य का धर्म है कि गांव के सुरक्षा प्रदान करे। गांव अपने ही महत्वपूर्ण गाय इतने ही महत्वपूर्ण है जितने की प्रजा। जिस प्रकार से प्रजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसी तरह गांवों को भी भेद की जाना चाहिए। वसुदेव कहते रहे कि धर्म पालन, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के कार्य परिजनों, राष्ट्र तथा संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके समान नागरिकों तथा गौओं को कोई कष्ट न पहुंचे, और अपने बंधुओं को तथा पशुओं की शांति तथा सुविधा का ध्यान रहना चाहिए, तथा तभी धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। वसुदेव को दुख था कि वे देवकी से उत्पन्न अपने ही पुत्र को संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहे। उन्हें लग रहा था कि वे धर्म, अर्थ, काम तथा सभी खो बैठे। ये सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय वसुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्र के कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त है। यद्यपि अंतिम शिशु कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया, वो स्वर्गलोक में चली गई है। हे मित्र, शोक न करें, हम सभी अपने विगत अदृश्य कर्म द्वारा नियंत्रित रहे। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्म के वश में है, और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित हैं, वही ज्ञानी मनुष्य हैं। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता। तब वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो, तो शीघ्र ही अपने स्थान को लौट जाए, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पत्त हो ही सकता है, उत्पाति हो सकता है, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। तब वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो तो शीघ्र ही अपने स्थान को लौट जाएं, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वसुदेव में इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले आए। कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया ग्वाल वृंद भी लौट गया। हरे कृष्णा। सो नंद महाराज और वसुदेव का साथ साक्षात हुआ। पहले तो नंदोत्सव का वर्णन हुआ और नंदोत्सव वर्णन के बाद क्या नंद महाराज क्या किया, राजा के पास गया कर देने के लिए। ये भी उत्सव का एक अंग है। ये सबको भेज दिया, 200,000 गाय ब्राह्मणों से बांट दिया और उसके पश्चात वो राजा को भेंट देने गए। वो राजा को जो भेंट दिया जाता है उसके कर कहा जाता है, टैक्स। ऐसे टैक्स एक तो जबरदस्त लिया जा सकता है, बल्कि और इससे भी अच्छा है कि जब कोई खुद जाकर दे देते हैं, मेरा कमाई इतना हुआ है, इसका 50% है, ये आपका शेयर है। आदमी लोग इतना सत होता था उस समय। और जाने के पश्चात वसुदेव, ये कर चुकाने के पश्चात वसुदेव के साथ उनका मुलाकात हुआ और वसुदेव ने बहुत ही आग्रह के साथ उनको वृंदावन का समाचार के पूछने लगे। और सबसे अधिक भावना उनका ये था कि ये बच्चा जिसको मैं रख के आया है उनका घर में, उसका हाल कैसा। उनका डर भी था कि कंस 10 दिन कृष्ण जन्म के बाद बीच 10 दिन में जिसका भी जन्म हुआ है उसको ही हत्या करने का निर्देश दिया था। उनका मन में डर था कि क्या इस कृष्ण को भी नंद महाराज के घर में जाकर कंस ने उसको हत्या करेगा। तो इसलिए उन्होंने, और यहाँ ये भी हमें समझना होगा कि वसुदेव और देवकी का स्थिति कैसा था, उनका मन में कितना कष्ट हो रहा था, बल्कि भक्ति में मन में कष्ट भी वांछनीय होता है, क्योंकि कष्ट से हृदय पवित्र हो जाता है। अग्नि के भांति कष्ट हमारे सारे पाप को नाश कर देता है, जला देता है। इसलिए भौतिक जगत में कष्ट प्राप्त होना भक्तों के लिए कल्याणकर है, शुभदायी है। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरि। आज हम यहां तक ही पाठ रखते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की जय। गौर प्रेमानंदे। Thank you.